ओम शांति, ओम शांति। आप प्रातःकालीन सत्रों में पिछले दो दिन से राजयोग के विषय में सुन रहे हैं और उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आपने समझा कि राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण मिलन या संबंध, और जब हम इसे राजयोग कहते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है और सर्वश्रेष्ठ संबंध है। इसे हम राजयोग कहते हैं क्योंकि ये हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है, कर्मेंद्रियों के हम अधिकारी बनते हैं या स्वयं के राजा बनते हैं। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। लेकिन योग अभ्यास से हमारे अंदर वो संयम आने लगता है। राजयोग में अनेक राज समाये हुए हैं, इसलिए भी ये राजयोग है। राज अर्थात हमने इसमें आत्मा का राज समझा, परमात्मा का राज समझा, आपने परिचय प्राप्त किया आत्मा का परमात्मा का, और साथ साथ समय का ज्ञान भी हमें मिलता है जो आपको इन सत्रों में अभी नहीं बताया गया है। तो ये सब राज जानने के बाद ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी भी संत महात्मा ने नहीं सिखाया, स्वयं परमात्मा शिव राजयोग हमें सिखाते हैं और ये सभी योगों का फल देने वाला है। अनेक प्रकार के योग भारत में किए जाते हैं, आप देख रहे हैं ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, क्रिया योग, विपस्सना योग और भी हो सकते हैं। तो इन सभी योगों का फल राजयोग में समाया हुआ है। अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो फिर हमें और किसी योग को करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो राजयोग एक चार्जर की तरह है, जैसे हम बैटरी को चार्जर में लगाते हैं और पावर से जोड़ते हैं तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है कि बैटरी के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो जब डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब उसको चार्ज करते हैं तो उसके केमिकल कंपोनेंट्स फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बैटरी चार्ज है। ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है जब हम पावर हाउस जो परमात्मा है उससे अपना कनेक्शन मन बुद्धि के द्वारा करते हैं। और ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि जो हम सोचते हैं वो करने की शक्ति भी हमारे अंदर होती है, नहीं तो हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। से ही राजयोग एक बांध की तरह भी है, जैसे नदी पर बांध बनाया जाता है तो उसके सदुपयोग होते हैं, जो भी जल संचय होता है उसे सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, पीने में प्रयोग किया जाता है, उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाकर बिजली बनाई जाती है, या जहां आवश्यकता होती है कैनाल्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही योग द्वारा हम मन की शक्ति का संचय करते हैं ना। अगर जल का संचय नहीं किया गया तो फिर हो सकता है कि नदी में पानी बढ़ने पर बाढ़ आ जाए और वो बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसे ही मन की शक्तियां जब व्यर्थ जाती हैं तो मनुष्य लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं, वो अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते। लेकिन जब मन की शक्ति को दिशा दी जाती है, उसका सदुपयोग करते हैं, यानी मन समर्थ होता है, शक्तिशाली होता है, तो मानव जीवन सफल होता है। तो राजयोग ज्ञान योग है, क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, इसमें हमें पूरी समझ मिलती है। ज्ञान माना समझ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उसे मुझे हासिल करना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है और उसे हम कैसे अनुभव करें। ये बुद्धि योग है, क्योंकि राजयोग मन बुद्धि पर आधारित है। मन के द्वारा ही हम परमात्मा को याद करते हैं और ये अदृश्य माध्यम है, यानी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ईश्वर से हमारा संबंध होता है। आज विज्ञान के इस युग में हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं। आज मोबाइल हम यूज करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति है उससे हम बात कर सकते हैं। तो दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मोबाइल सेट से कुछ तरंगें निकलती हैं जो टावर से होते हुए दूसरे सेट तक जाती हैं, और वहां से भी यही प्रक्रिया होती है, और हम ऐसे सुन रहे होते हैं जैसे हम सामने ही बैठकर बात कर रहे हैं। तो वो तरंगे हमें दिखाई नहीं देती। आज हम वायरलेस यूज करते हैं, आप रिमोट से टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, बहुत से साधन हैं जो आज रिमोट से चलते हैं। तो दिखाई देने वाला तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य तो हो रहा है। तो ऐसे ही मन से जब हम प्रभु चिंतन करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं और उनसे शक्तियां भी हम ग्रहण करते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब परमात्मा से हमारा परिचय नहीं है तो भी हम उसे याद कर रहे हैं, ये वन वे होता है, क्योंकि हमें पता नहीं भगवान कहाँ है, तो हम सिर्फ मूर्ति के सामने बोलकर आ जाते हैं या जो भी हम विधि अपनाते हैं। तो राजयोग बुद्धि योग है, राजयोग कर्म योग भी है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए परमात्मा की याद। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, हम कहेंगे हमारे दैनिक कर्म है, हम करते ही, हम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, ये तो हमें करना ही है। जब हमारी बुद्धि बहुत व्यस्त नहीं होती, क्योंकि ये कार्य करने के हम अभ्यस्त हैं। ऐसे भी और बहुत कार्य हैं जब हमें बहुत बुद्धि नहीं लगानी होती, भोजन बनाते हैं या घर के जो भी छोटे मोटे कार्य हम कर रहे होते हैं, तो उस समय हम मन को जब भगवान में लगाते हैं, ट्रस्टी भाव से हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म योग हो जाता है। और कर्म योग सत्कर्म कहलाते हैं। सत्कर्मों का फल बहुत ऊंचा होता है, यानी सत्कर्म केवल हमें वर्तमान में ही फल नहीं देते, लेकिन हमें आने वाले जन्मों तक भी उसका फल मिलता है। ये आम के बीज बोने की तरह है, जैसे कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं ना, तो कई प्रकार के बीज होते हैं और उसके फल भी उसी प्रकार के होते हैं। अगर हमने गेहूं बोया या मक्का बोया तो हमें फल मिलता है, एक गेहूं से बहुत गेहूं हो जाते हैं, लेकिन एक सीजन जो भी होगा, जो भी फसल हमने लगाई वो एक सीजन ही हमें मिलेगी, और फिर अगर हमें दोबारा चाहिए तो फिर हमें फिर से वो फसल लगानी होगी। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया है या सेब बोया है या अनार बोया है या हमने नारियल बोया है, तो हमने एक बार उसे बोया, हो सकता है हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक वर्ष दो वर्ष, लेकिन जब वो फलेगा तो फिर हम ही नहीं खाएंगे लेकिन हमारी पीढ़ियां भी उसे खाएंगी। तो अनगिनत फल हमें उससे प्राप्त होता है। तो ऐसे ये कर्म योग का फल है। भले हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, लेकिन कर्म की गति के अनुसार वर्तमान में भी हमें उसका फल अनुभव होता है, उस श्रेष्ठ कर्म की का हमें सुख शांति और शक्ति का अनुभव और साथ साथ भविष्य के लिए भी इन जन्मों तक के लिए भी हमारी प्रारब्ध जमा होती है। तो इसीलिए परमात्मा की याद में किए गए कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म होते हैं। और हमारी बहनें तो बहुत सहज कर सकती हैं क्योंकि भोजन बनाने का कार्य तो लगभग करना ही होता है। तो जब हम भोजन बना रहे हैं, अगर परमात्मा की याद में हम भोजन बनाते हैं तो फिर वो भोजन प्रसाद हो जाता है, वो प्रभु अर्पण हो जाता है। ऐसे ही भक्ति योग है राजयोग। भक्ति अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव जो हम भक्तों में देखते हैं, जो परमात्मा के परम भक्त हुए उनका ईश्वर के प्रति ये भाव रहा। उन्होंने कोई ना कोई संबंध ईश्वर से अनुभव किया, क्योंकि संबंधों में ही प्रेम और समर्पण होता है। तो चाहे माता पिता, जैसे हम कहते भी हैं ईश्वर के लिए, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। तो परमात्मा हमारे सर्व संबंधी हैं। हम जिस भी संबंध से उन्हें याद करें उसे कहते हैं ऑल इन वन। सांसारिक संबंध ऐसे नहीं होते, माता अलग है, पिता अलग है, बहन अलग है, भाई अलग है, दोस्त अलग है, शिक्षक अलग है, गुरु अलग है, पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग। लेकिन एक ईश्वर में वो शक्ति है कि एक में ही हम सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो परम भक्त हुए उन्होंने विशेष संबंध ईश्वर के साथ जोड़ा, जैसे मीराबाई ने उसे पति के रूप में याद किया, सती अनसुईया ने उन्हें बच्चे के रूप में याद किया, प्रहलाद ने उन्हें पिता के रूप में याद किया, अर्जुन ने उन्हें सखा के रूप में याद किया। तो जब भी आवश्यकता हुई परमात्मा ने उस संबंध से उनको निभाया। तो राजयोग में भी हम परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करते हैं, पर अगर कोई संबंध हमें विशेष प्रिय है तो फिर हम उस संबंध का विशेष अनुभव भी ईश्वर से कर सकते हैं। राजयोग संन्यास योग भी है। जब हम संन्यास का नाम सुनते हैं तो थोड़ा भ्रम होता है। भ्रम इसलिए होता है कि कभी भय होता है कि कहीं छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम सुनते भी हैं कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य आध्यात्मिकता की ओर जा रहा है तो हमें लगता है ये सब कुछ छोड़ देंगे, और हम भी थोड़ा दूर रहते हैं कि कहीं हम जाएंगे तो मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, पाना चाहता है। तो परमात्मा हमें हमसे वो संन्यास नहीं कराते जो हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं, घर बार छोड़कर चले जाते हैं और फिर कहीं भी जंगल में आश्रम बनाकर या शहर में आश्रम बनाकर रहते हैं। परमात्मा हमें घर गृहस्थ में रहते हुए जो बुराइयां हमें छोड़नी है, असली संन्यास विकारों का संन्यास है, कमियों का संन्यास है, वो संन्यास हमें कराते हैं। तो अपना कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए, संबंध निभाते हुए यदि हम ये संन्यास करते हैं तो ये उस संन्यास से भी महान संन्यास है। कोई संन्यासी बन जाता है और बुराई नहीं छोड़ पाता। आज हम ऐसे भी मिसाल हैं कि भले संन्यासी हो गए लेकिन विकारों को नहीं छोड़ पाए, तो जेल में भी हैं, तो वो संन्यास धर्म को भी बदनाम करते हैं। लेकिन संसार में रहते हुए अपना सब जिम्मेवारियां निभाते हुए अगर हम बुराइयां जो हमें जीवन में दुख अशांति देने वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही हैं जो हमारे जीवन में जहर घोलते हैं, तो इनका तो हम संन्यास या इनका त्याग हम करना ही चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं हम कैसे करें। परमात्मा हमें वो विधि बताते हैं। तो वो बेहद का सन्यास है, साधारण सन्यास नहीं। फिर राजयोग समत्व योग भी है। समत्व का अर्थ होता है संतुलित रहना। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, इनसे हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमें लाभ होता है, कभी हमें हानि भी होती है, कभी हमें सफलता मिलती है, कभी हम असफल भी होते हैं। तो मनुष्य सफलता में और लाभ में हम कहेंगे या सुख में कई बार अहंकार में आ जाते हैं, और जब असफलता मिलती है या हानि होती है, दुख होता है जीवन में, तो बहुत निराश हताश हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन समाप्त तक भी कर लेते हैं। लेकिन एक योगी को मालूम है कि कोई भी समय सदा रहने वाला नहीं है। जो भी समय है वो गुजर जाता है, एक थोड़ा समय वो समय रहता है। सुख भी सदा नहीं रहने वाला है तो दुख भी सदा नहीं रहने वाला है। तो परमात्मा की याद से, उसके साथ से हमारे अंदर वो शक्ति रहती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखें, नहीं तो ये स्थितियां मन को विचलित करने वाली होती हैं। राजयोग हठ योग भी है। हठ योग दुनिया में करते हैं भगवान को पाने के लिए, माना परमात्मा से एक हठ करना, एक जिद करना। जैसे कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में 9 दिन निर्जल रखते हैं, या देवी के दर्शन करने जाएंगे तो नंगे पैर पैदल चलकर कितना भी ऊंचाई पर जाना हो ऐसे जाएंगे, या कोई ना कोई क्रिया करते हुए हम देखते हैं भक्त किस किस प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हैं कि मुझे देवी का दर्शन होना ही चाहिए, या मेरी मनोकामना पूरी होनी ही चाहिए, अगर नहीं हुई तो मैं अपने प्राण तक दे देंगे, ऐसा ऐसा उपवास करते हैं, या इतने इतने दिन तक ये साधना हम करेंगे। तो राजयोग में हम साधना करते हैं लेकिन इस प्रकार का हठ नहीं करते हैं। जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, माना जो हठ कहा गया, एक जिद जिसे हम बोलेंगे, हम उसे प्रतिज्ञा के रूप में, दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में करते हैं कि आज सारा दिन चाहे जो भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। जैसे वो व्रत रखा आपने, जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं या कोई भी व्रत आप रख रहे हैं, तो आपको कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन दे देगा, आप कहीं किसी के घर जाते हैं और वो आपके लिए भोजन परोसते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आज नहीं, आज मेरा व्रत है। तो किसी भी कीमत पर हम अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने व्रत तोड़ा तो जिस इष्ट के लिए या जिस भावना से मैंने व्रत रखा है वो नहीं होगा, वो नाराज भी हो सकते हैं। तो यहां भी हम, अब स्थितियां तो बहुत बन सकती हैं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा, कोई झूठ बोलेगा, हो सकता है कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करे, मेरी इंसल्ट कर दे, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आज नहीं करना है, मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना है। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा हम परमात्मा से करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो ये राजयोग हमें सभी योगों का अनुभव कराने वाला है। हम सभी भगवान को याद करते हैं और हमारी अपनी अपनी विधियां हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में एक छोटा मंदिर स्थान बनाते हैं, पूजा का स्थान बनाते हैं, और जो भी आपके इष्ट हैं उनके चित्र आप रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, और रोज सुबह उठ करके हम कुछ दिया करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, कोई स्तुति करेंगे, और हमारी भावना क्या होती है, सब कुछ जीवन में ठीक चलता रहे। कोई विशेष दिनों में हम मंदिर में दर्शन करने चले जाएंगे, फिर दर्शन जरूर करेंगे चाहे धक्के खा के करना पड़े, है ना। आज के समय में जब विशेष दिन होते हैं तो मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, और भीड़ में कैसे दर्शन होते हैं, एक धक्के में अंदर और दूसरे धक्के में बाहर होते हैं, हम भगवान के सामने खड़े होकर के अपना जो भाव प्रकट करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इस विधि से परमात्मा की आशीर्वाद हम पर बनी रहे ना, उसकी दुआएं हमें मिलती रहें, ये हमारा भाव होता है। फिर कुछ लोग माला जाप भी करते हैं, खासकर वानप्रस्थी होते हैं, वो समझते हैं हमारा ज्यादा समय भगवान की याद में गुजरना चाहिए, तो माला से माला पकड़ के भगवान के नाम का स्मरण हम ज्यादा समय कर सकेंगे। तो ऐसा होता है कि माला के मणके भी फिरते हैं और मन भी फिरता है, मन तो एकाग्र इतना नहीं हो पाता है। जिसे कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी माला तो हम फेरते आ रहे हैं, लेकिन फिराना किसको है, परिवर्तन किसको करना है, वास्तव में मन को परिवर्तन करना है। तो मन का परिवर्तन ही या मन को ईश्वर में लगाना ही वो सही उसकी याद है। फिर मंत्र भी जपते हैं, कुछ गुरु से मंत्र लेते हैं, कुछ जीवन में कोई ना कोई संकट आते हैं तो उनको मंत्र दिया जाता है। जैसे उपाय बताते हैं ना, भई आप ये मंत्र को 108 बार जपो, इसको 1008 बार जपो, और ये मंत्र आप जपेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, जो भी। तो हम मंत्र जपते हैं, मंत्र होते हैं संस्कृत में, और संस्कृत वर्तमान में हमारी भाषा नहीं है, इसलिए उन मंत्रों के अर्थ हमें नहीं पता होते। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो कितनों को इसका अर्थ मालूम है, ज्यादातर हमें अर्थ नहीं मालूम होता, पर हम मंत्र जप रहे हैं तो हमारे भाव नहीं जुड़ते उसके साथ। फिर हमें ये भी कहा जाता है 108 बार जैसे कहा गिनती, तो हम शुरू में मंत्र जपना शुरू करते हैं तो मन संसार की बातों से निकलकर मंत्र में आ जाता है, तो थोड़ा शांति का अनुभव हमें होता है। लेकिन जब हम वही 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 जप रहे हैं तो फिर क्या होता है, मुख मंत्र बोलता है और मन अपना काम शुरू कर देता है, और हमारा ध्यान भगवान में नहीं गिनती में होता है, 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1008 बार हुआ कि नहीं हुआ। मानो हमने मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है मैं शिव को नमन करती हूं, तो मुझे यही नहीं मालूम मैं कौन हूं, फिर मुझे ये भी नहीं मालूम शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका पूरा परिचय तो नहीं है, तो क्या मेरा नमन शिव तक पहुंचता है, नहीं पहुंच पाता है। मंत्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सलाह, जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह, तो मंत्र माना अपने मन को सलाह देना, अपने मन को सिखाना, दिशा देना। तो राजयोग में हर विचार ही एक मंत्र है, हम अपने मन को विचार दे रहे हैं, समझा रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, परमधाम से आई हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो राजयोग अभ्यास में हमें कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, तो राजयोग में हम इस स्थूल विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। मन को आधार देने के लिए सूक्ष्म विधियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन सूक्ष्म है। आप देख रहे हैं जैसे चित्र में एक बच्चा है अपने पिता को याद करता है, तो संबंध है तो सहज याद है, उसको याद करने के लिए कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, अपने पिता को याद करने के लिए कोई माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे पिता हैं और उन्हें हम सहज रूप से याद कर सकते हैं। तो चार आधार हैं जिसके आधार पर परमात्मा की याद हमें सहज होती है। दुनिया में भी किसी मनुष्य को हम याद करते हैं तो भी ये चार आधार हैं, याद का आधार ही यही है, परिचय होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए और उनसे प्राप्ति होनी चाहिए। ये चार बातें हैं जो मन को ले जाती हैं। मानो अगर किसी से हमारा परिचय नहीं है तो क्या हम उसको याद कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिचय होने के बाद एक कुमार और कुमारी हैं, उनकी शादी की उम्र है और उनके माता पिता उनके लिए वो ढूंढ रहे हैं, तो उनका मन भटकता है कि कौन भविष्य साथी होगा, है ना। लेकिन जब तय हो जाता है रिश्ता तो मन टिक जाता है, पता है कि अब ये भविष्य साथी हैं, तो मन अपने आप ही उसकी याद में एकाग्र होने लग जाता है। तो परिचय हो गया, परिचय होते ही और संबंध बन गया, तो परमात्मा का भी हमें परिचय मिला सभी को। परमात्मा का नाम क्या है? क्या नाम है? शिव है। कहाँ रहते हैं और उनका रूप क्या है? ज्योति बिंदु निराकार। तो परिचय मिला और संबंध हमारे परम पिता हैं, परमात्मा हमारे सर्व संबंधी हैं। जैसे कहा, वो हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु, दोस्त, साथी, जो भी संबंध हम उनके साथ अनुभव करना चाहें वो संबंध है। तो संबंध के आधार पर तीन प्रकार की याद होती है। एक हम याद करते हैं, दूसरा हमें याद आती है और तीसरा हमें याद सताती है। हम याद करते हैं स्वार्थ से, यानी किसी से मुझे कोई काम है तो हम याद करते हैं, वो मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। कोई अवसर होता है तो हमें निमंत्रण देना होता है तो हम सबको याद करके निमंत्रण देते हैं, कोई रह ना जाए, अगर रह जाएंगे तो वो नाराज हो सकते हैं हमसे, तो याद करना इसको कहते हैं ना, समय पर हमने याद किया। दूसरा, याद आती है। किसकी याद आती है? जिनसे हमें बहुत स्नेह और समीपता होती है उनको हमें याद करना नहीं पड़ता, अपने आप उनकी याद हमें आती है। और याद सताती है, माना दुख देती है। किसकी याद दुख देती है? किसकी याद दुख देती है? जो हमसे बिछुड़ गया है सदा के लिए, मानो मृत्यु हो गई, अब जो प्रिय है उसकी मृत्यु हो गई, तो हम उसको याद करके दुखी होते हैं कि क्योंकि पता है कि जो चला गया वो अब लौट कर आने वाला नहीं है। या संबंधों में ऐसा होता है कि कोई हमेशा के लिए हमारे जीवन से, मानो विदेश चले जाते हैं, बच्चे विदेश चले गए और माँ को पता चलता है कि विदेश में वो बीमार है, तो उसको याद करके दुखी होती रहेगी कि पता नहीं उसने ठीक से खाया होगा नहीं, पता नहीं उसने दवाई ली होगी नहीं। तो ये है सताने वाली याद। जो व्यक्ति हमसे अलग हो गया है उसको फिर हम याद करते हैं तो दुखी होते हैं। परमात्मा की याद इन तीनों याद में से कौन सी होनी चाहिए? याद करें, याद आए या याद सताए? जो समझते हैं, परमात्मा की याद सताने वाली याद होनी चाहिए, वो हाथ उठाएं। अच्छा, कुछ का विचार है। जो समझते हैं परमात्मा की याद आनी चाहिए वो हाथ उठाएं, मेजॉरिटी। और याद करते हैं, मेजॉरिटी, याद आनी चाहिए। तो वैसे भी कहते हैं मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, हाँ, तो आप राइट हैं। क्योंकि भगवान की याद सताने वाली याद नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की याद हमें कभी दुख नहीं देती, ईश्वर की याद हमें सुख देती है। इसीलिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, उसकी याद हमें सुख देने वाली है। फिर हम परमात्मा को याद करते हैं वास्तव में, पर याद आनी चाहिए। आज कलयुग के समय में हमें भगवान की याद आती नहीं है, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं या जब हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तब हम भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं, जिसको कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो ज्यादातर जीवन में संकट आता है, जब हम कष्ट में होते हैं तो फिर भगवान की याद भूलती नहीं है हमको, भगवान को याद करते हैं। या फिर एक बच्चा है, उसे एग्जाम में पास होना है, तो वो भगवान जी मुझे पास करा देना, पास हो गए तो अब मुझे अच्छी नौकरी लगवा देना, अच्छी नौकरी लग गई तो अच्छे घर में शादी करा देना। अच्छा, अब अच्छे घर में शादी हो गई, अब क्या चाहिए, एक मकान होना चाहिए अच्छा सा, फिर गाड़ी होनी चाहिए, जो भी, अगर बेटा नहीं है तो बेटा होना चाहिए। तो जिंदगी भर जो भी हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं उसको लेकर के हम भगवान के सामने होते हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं, हम सौदा भी करते हैं कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर जितनी हमारी क्षमता है उतना हम कह देंगे कि हम इतना करेंगे। हमारी इच्छा पूरी हो गई तो भगवान को प्रसाद मिलेगा, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, भगवान को मनुष्य की श्रेणी में ले आया। हाँ, हम सोचते हैं जैसे इंसान आज बिना लेन देन के काम नहीं करते हैं, तो भगवान से भी कुछ लेन देन हमको करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो हमारा काम करेंगे। आज जैसे हम सुनते रहे, तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो हम अनुभवी अपने जीवन में, आज कोई भिखारी हमारे सामने आकर भीख मांगता है तो हमको पसंद आता है, किसी को पसंद आता है, हम देखते हैं ये काम कर सकता है, कमा कर खा सकता है, तो बिल्कुल भी हम उसे नहीं देंगे। और अगर हमें दया का पात्र लगता भी है कोई कारण से, तो कितना देते हैं, मेरी पर्स में सबसे छोटा नोट वो निकाल करके हम उसको देंगे। अब भगवान के सामने हम खड़े हैं जाकर के और मांग रहे हैं, तो भगवान भी हमें जज करेगा ना, हम भी भिखारी को जज करते हैं, ये लेने लायक है भी कि नहीं, तो भगवान हमें जज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमें इतना अद्भुत मानव शरीर दिया है जो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। तो हम कर्म करने की बजाय छोटी छोटी चीजें कहां खड़े होकर मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, तो देखेगा मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो मिलेगा, और नहीं मिलना चाहिए तो फिर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता तो कई बार हम भगवान से फिर नाराज भी हो जाते हैं, शिकायत भी करते हैं ईश्वर से। तो परमात्मा को हम याद करते हैं, उसकी याद हमें आती नहीं है, क्योंकि इतना समीप संबंध ईश्वर के साथ हमारा है नहीं, इतना स्नेह ईश्वर से नहीं है, वो टूटा हुआ है। तो उस संबंध को हम कैसे अनुभव करें, परमात्मा के साथ जो हमारे संबंध हैं, तो संबंध का आधार समानता है। दुनिया में भी जिससे हमारे विचार समान, विचार मिलते हैं, उनसे हम समीप हो जाते हैं ना? उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, या कोई ना कोई रिश्ता हम उनसे बना लेते हैं। आज किसी की शादी भी होती है तो क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, और कुंडली मिलाते हैं और ये देखते हैं कि इनके गुण समान हैं, तो कहते हैं योग है। अगर गुण मिलते हैं तो कहते हैं योग है, और अगर गुण नहीं मिलते हैं तो योग नहीं है। तो यहाँ समानता के आधार पर योग माना वो संबंध बन सकता है, गुण कितने समान हैं। तो परमात्मा से भी हमारी तीन समानताएं हैं। पहली है स्वरूप की समानता, दूसरी है धाम की समानता, और तीसरी है गुणों की समानता। और जब इस समानता के आधार पर हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं, तो हमें वो समीपता का अनुभव ईश्वर के साथ होता है। तो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो राजयोग अभ्यास में हम अपने मन की स्थिति निराकारी बनाते हैं। आप दो दिन से अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास के प्रारंभ में हम क्या चिंतन करते हैं, क्योंकि वैसे हम शरीरधारी हैं, आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है। तो जब हम शरीर समझकर, देह समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि जैसे हम दो तारों को जब जोड़ते हैं तो उनका रबड़ हमें हटाना पड़ता है। तार को तार से जोड़ने से ही करंट फ्लो होगी, अगर रबड़ सहित जोड़ दिया तो करंट फ्लो होगी नहीं। तो परमात्मा तो सदा निराकार है, वो तो देहधारी है ही नहीं। तो मेरे मन को हमें उनकी फ्रिक्वेंसी पर ले जाना है, तभी हम उसकी शक्ति का अपने में अनुभव कर पाएंगे और उनकी समीपता का अनुभव कर पाएंगे। तो हम मन को आत्मिक स्थिति में पहले ले जाते हैं, देह से नियारा करते हैं अपने आप को। तो राजयोग का आधार ही है अपने को आत्मा समझकर, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो पहले तो मुझे अपनी देह से न्यारा होना है, फिर जो अन्य जो सांसारिक संबंध वो भी देहधारी हैं, उनसे भी मन को न्यारा करना है, तो मेरी फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से मैच करती। आज हमें कोई रेडियो सुनना है, उसे ट्यून करना है, तो क्या करना होता है? FM रेडियो सुनते हैं तो क्या करते हैं? फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हैं ना। तो जो स्टेशन मुझे सुनना है उसकी फ्रिक्वेंसी पर जब मेरा रिसीवर ट्यून होता है तो ही हम वो स्टेशन सुन पाएंगे, नहीं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं सुन सकते। आज टीवी में जो चैनल देखना है उसे हम ट्यून करते हैं तब वो चैनल हम देख पाते हैं। तो परमात्मा के साथ भी मेरे मन की फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तब हम वो कनेक्शन महसूस करते हैं। दूसरी समानता है ईश्वर के साथ धाम की समानता। हम आत्माएं परम धाम निवासी हैं तो परमात्मा भी परम धाम निवासी हैं। एक ही घर है, पिता और बच्चे का घर एक ही होता है, माता पिता और बच्चों का घर एक ही होता है। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का रेजिडेंस या निवास स्थान अबोर्ड एक ही है, तो उस आधार पर हमारी समीपता है। वैसे भी हम देखते हैं दुनिया में भी कोई एक ही स्थान के लोग कहीं मिल जाएं। मानो आप जॉब के कारण दिल्ली में गए और वहाँ दिल्ली में ही आपको कोई मिल जाता है जो बताता है कि वो उसी शहर से है जिस शहर से आप आए हैं, और केवल उसी शहर से नहीं उसी सोसाइटी से भी है जहाँ आप रहते हैं, पर आप उसको पहले नहीं जानते थे, पर यहाँ आकर के आपकी उससे पहचान हुई। तो जितना अपनापन आपको उनसे लगेगा या जितना जल्दी आप उनके समीप हो जाएंगे औरों के नहीं होंगे, क्योंकि स्थान की समानता है। यहाँ भी अगर आपको कोई ऐसा मिले जो ज्ञान सरोवर में अभी आप आए कोई मिल जाए ऐसा, तो क्या होगा? बहुत जल्दी उनसे दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि समानता है। कोई भी समानता हो, मानो जैसे दो डॉक्टर आपस में मिलते हैं, प्रोफेशन समान है तो जल्दी फ्रेंडशिप हो जाएगी, दो बच्चे आपस में मिलेंगे तो जल्दी क्लोज हो जाएंगे। तो समानता जहां है, तो परमात्मा से हमारी धाम की समानता है, और वो परम धाम में रहते हैं तो हम उनको परम धाम में ही याद करते हैं। मानो आपके, फॉर एन एग्जाम्पल, मानो आपके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और कोई कारण से यहां आप उनको याद कर रहे हैं, तो मन कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा या नहीं जाएगा? दिल्ली में ही जाकर याद करेगा ना, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। तो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और हम उन्हें यहां बैठे हुए याद कर रहे हैं, तो मन कहां जाएगा? मन परम धाम जा सकता है या नहीं जा सकता है? मन तो कहीं भी जा सकता है, मन को कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। इसको कहते हैं समय स्थान व्यक्ति का कोई बंधन नहीं है हमारे मन को, तो हमारा मन कहीं भी जा सकता है क्योंकि इसकी गति प्रकाश की गति से भी तेज है, रॉकेट से भी तेज चलता है हमारा मन, तो सेकंड में अमेरिका पहुंच सकता है। वैसे अमेरिका पहुंचने में 24 घंटे लग जाएंगे है ना, लेकिन मन से हम कितनी देर में पहुंच सकते हैं। तो मन से हम परमात्मा को परम धाम में याद करते हैं क्योंकि वो परम धाम निवासी हैं परमात्मा। और तीसरी समानता है हमारी ईश्वर से गुणों की समानता। आत्मा सर्व गुणों का स्वरूप है तो परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं। हम उनकी तुलना सागर से करते हैं। कल आपने परमात्मा के परिचय के सत्र में समझा कि वो शांति के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, प्यार के सागर हम उनको कहते हैं, वो सदा सुखदाता हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वो आनंद के सागर हैं और उनकी महिमा हम ऐसे ही गाते हैं। तो उनके गुणों का स्मरण करते हुए हम परमात्मा को याद करते हैं। भक्ति में भी हम यही करते रहे, आज तक भक्ति में हम जो भी स्तुति आरती करते हैं वो क्या है, जो भी कीर्तन करते हैं वो क्या है, ईश्वर की महिमा है। कीर्तन माना ही कीर्ति गाना, स्तुति माना ही उसकी महिमा का स्मरण करना, तो वही हम कर रहे थे लेकिन बोल बोल कर, है ना। उसमें भक्ति में हम भजन बोलते हैं, कीर्तन करते हैं और उसमें साजों और बाजों और मंजीरों का प्रयोग करते हैं ना? तो जब हम भगवान को याद कर रहे हैं इस विधि से तो उस समय मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन हमारी शक्तियां बाहिमुखी हो जाती हैं क्योंकि हम जोर जोर से बोलते हैं, तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। उस समय के लिए हमें थोड़ा अनुभव होता है लेकिन राजयोग में हम आप अनुभव कर रहे हैं, यहां पर कहीं आपको कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा ना? लेकिन साइलेंस में, शांति में हम ईश्वर के गुणों का ही स्मरण करते हैं, मनन करते हैं। और जब हम मन ही मन उसे मनन करते हैं तो हमारी शक्तियां अंतर्मुखी होती हैं, वो पावर से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो राजयोग अभ्यास से हम जो परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहते हैं वो ला पाते हैं। कुछ कहते हैं कि क्या भगवान से हम गुण मांग सकते हैं, चलो और संसार की चीजें हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। जैसे कुछ यही कहते हैं कि भगवान जो जिंदगी में चाहिए सब मिला है, बस एक सुख शांति ही नहीं है, तो सुख शांति दे दो। तो क्या कहेंगे, सुख शांति दे दो? भगवान से हमें सुख शांति मांगने की आवश्यकता है? अगर हम सागर के किनारे जाते हैं तो क्या सागर से हमें हवा मांगनी होती है? वो उसका गुण है, अपने आप ही हमें हवा मिलती है, सागर के किनारे जाने की जरूरत है, सी बीच पर जाने की जरूरत है। वो जो सुंदर दृश्य है वो अपने आप हमें अनुभव होता है, या आग के समीप आप बैठे हैं तो आपको गर्मी मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गर्मी है वहां और हमें अनुभव होती है क्योंकि वो आग का गुण है। तो जैसे ही मन परमात्मा के समीप जाता है, हम उसे याद कर रहे हैं, मन ईश्वर के समीप है और वो है ही सागर, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, तो हमें स्वतः ही अनुभव होता है, उसके संग में हमें वो अपने आप अनुभूति होने लगती है, हमें वो भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए राजयोग में हम कभी भी ईश्वर से मांगते नहीं हैं। जो भाषा आप सुनते हैं, जो भी आप दो दिन से योग अभ्यास कर रहे हैं, हे ईश्वर मुझे ये दे दो, ये भाषा प्रयोग नहीं करते हम, क्योंकि परमात्मा तो हमारा पिता है, माता पिता है और हम अधिकारी हैं उनकी संतान होने के नाते। जैसे बच्चे अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं यानी माँ बाप खुद ही उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, खुद ही कर रहे होते हैं, यानी उनको पता है मेरे बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसको क्या भोजन देना है, क्या वस्त्र देना है, उनका क्या कैरियर होना चाहिए, क्या भविष्य मुझे बनाना है, फिर उसके लिए जो भी करना पड़े, बच्चे मांग रहे हैं क्या, कौन कर रहा है, खुद माता पिता ही आवश्यकता पूरी कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनको पता है कि क्या चाहिए। तो परमात्मा भी हमारी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी करते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। जब हम गलत दिशा में जाते हैं, जिसको कहा जब वो लोभ में परिवर्तन हो जाता है, तो वो फिर भगवान की जिम्मेवारी नहीं होती है। तो इसीलिए हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम ईश्वर को उस प्यार से, उस संबंध से याद करते हैं, वो स्वतः ही हमारे लिए करते हैं। तो राजयोग अभ्यास में जब हम इनिशिएट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम मन को एकाग्र तुरंत कर लेंगे या कर पाएंगे, ये इतना आसान नहीं होता। ये भी आप अनुभव कर रहे होंगे कि हम चिंतन शुरू करते हैं, क्योंकि योग माना सांसारिक चिंतन से मन को निकाल करके ईश्वरीय चिंतन में लाना है, हमें आत्म चिंतन में लाना है, परमात्म चिंतन में लाना है। तो मन इतना जल्दी संसार के विचारों से न्यारा नहीं हो पाता। मैंने एक विचार किया मैं आत्मा हूं, क्या होगा, दूसरा विचार आएगा आज साइट सीन जाना है, बाहर जाएंगे सब टाइम पर आ जाने चाहिए, फिर सोचेंगे नहीं अभी तो योग कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान हूं, फिर याद आएगा सॉरी घर में बच्चों को छोड़कर आई हूं, पता नहीं उसने नाश्ता किया, टाइम पर स्कूल गया होगा नहीं गया होगा, जो भी मतलब मेरे काम है वो कोई मुझे याद आएगा और तुरंत मेरा मन वहां, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर याद आएगा अरे अभी तो मैं योग में बैठी हूं, चलो अभी परमात्मा का ध्यान करो। तो बहुत मुश्किल लगता है हमें, और हम 15 मिनट बैठे मानो तो कई बार सिर में दर्द हो जाएगा, फिर भारी हो जाएगा, फिर हम सोचते हैं अरे योग किया सिर भारी हो गया, सिर में दर्द हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर सिर भारी क्यों हुआ, हमने योग किया या युद्ध किया, संघर्ष किया अपने विचारों से ही, इसको कहते हैं अंतर्द्वंद की स्थिति होती है, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं करना ये और हो रहा है कुछ और, तो इसके कारण सिर भारी होने लगता है क्योंकि योग नहीं किया हमने। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी होती है तो ये बहुत सामान्य है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम जीवन में शुरू करते हैं तो वो आसान नहीं होता है। कोई भौतिक उपलब्धि भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं या कुछ हम जीवन में सीखते हैं नया, तो क्या हम एकदम सीख जाते हैं? आज कोई ड्राइविंग सीखता है, मानो 4-व्हीलर चलाना सीख रहा है, तो कितना दिन लगता है, एक दिन में ड्राइविंग आ जाती है क्या? और जब चलाना शुरू करते हैं तो कितना संभाल संभाल के चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे, कहीं गाड़ी लग ना जाए, तो बहुत सोच करके चलाएंगे। और जब चलाने में कुशल हो जाते हैं तो फिर कैसे चलाते हैं, फिर सोचते भी नहीं, बातें करते करते या मोबाइल भी यूज करते करते गाड़ी चलाएंगे। तो यहां भी ऐसे ही है, ये तो मन सूक्ष्म है, स्थूल में भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सूक्ष्म मन क्या एक ही बार में एकाग्र हो जाएगा, एक ही बार में सही दिशा में आ जाएगा? नहीं। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना होता है, निराश नहीं होना है। कई बार हम सोचते हैं इतना समय दे रहे हैं, योग तो लगता नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद करना है ना? तो इससे तो अच्छा है हम कोई और काम कर लें, योग लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे मानो अगर मुझे कोई दीवार को तोड़ना है और हमने 100 हथौड़े लगाए, 100वें हथौड़े में दीवार टूटी तो क्या 99वें हथौड़े बेकार गए? हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी। तो हमारा हर प्रयास जो हम कर रहे हैं, भले ही योग नहीं लग रहा है, लेकिन वो प्रयास हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। और हमें कई बार सिर्फ एक मिनट भी शांति का अनुभव हुआ, मानो आपने 10 बार किया और 11वीं बार जाकर के आपको लगा हाँ आपका कनेक्शन हुआ और आपको वो शांति मिली, तो फिर हमारा मन अपने आप ही वो योग के लिए उसमें रुचि आने लगेगी। प्राप्ति हुई ना, प्राप्ति से भी वो हमें सतही आकर्षण होता है, क्योंकि मन को प्राप्ति चाहिए। तो मन को जब वो सुख मिलता है, मन को जब वो आनंद मिलता है, तो अपने आप ही फिर हम समय ढूंढते हैं कब समय मिले और हम योग करें। तो लेकिन शुरू में हो सकता है कि कई प्रयास में हम उतना सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें उसे जारी रखना है, उसे हमें कंटिन्यू करना है, तो धीरे धीरे हमारे योग लगने लगेगा। तो ये इनिशिएशन की स्थिति हमारी होती है। फिर दूसरे स्टेज में जब हमारा मन पहुंचता है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, यानी अब मेरे मन में आध्यात्मिक चिंतन चल रहा है, सांसारिक विचारों से मेरा मन पूरी तरह से न्यारा हो गया और मैं आत्मचिंतन में हूँ और ईश्वरीय चिंतन में हूँ, परमात्मा के गुणों का स्मरण हम कर रहे हैं और मन धीरे धीरे परमात्मा में ही एकाग्र होने लगता है। एकाग्रता की स्थिति में फिर हम सब कुछ भूल चुके हैं, सिर्फ हमें ईश्वर की ही लगन है, वही हमारे मन रूपी नेत्र के सामने, स्थूल नेत्रों से तो भगवान हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन हमारा अंतर्चक्षु किसे कहते हैं हम, मन को कहते हैं, मन हमारा तीसरा नेत्र भी है। तो उस अंतर्चक्षु के सामने सिर्फ ईश्वर का ही चित्र है, उसके ही गुणों का स्मरण है। यह इस तरह से है जैसे हम महाभारत में याद करते हैं कि अर्जुन का मन कैसे एकाग्र होता था, एक मिसाल बताते हैं उनके जीवन का, गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और वो कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो कुछ समय सिखाने के बाद उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, कहाँ तक ये प्रवीण हुए हैं। तो उन्होंने एक पेड़ पर एक चिड़िया रखी, मिट्टी की चिड़िया बनाकर रखी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और कहा युधिष्ठिर तुम निशाना लगाओ, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा गुरुजी सब दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, डालियां पत्ते फूल सब दिख रहा है। तो गुरु ने कहा तुम हट जाओ, ये भी बोला चिड़िया दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से भी पूछा यही सवाल। तो उसने भी कहा गुरुजी सब दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, चलाऊं तीर। तो कहा नहीं, तुमसे भी नहीं होगा। फिर भीम का नंबर था तो भीम ने भी वही जवाब दिया, तो गुरु ने उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन की बारी थी तो अर्जुन से पूछा अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बोला गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा तुम तीर चलाओ, और उसने तीर चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। तो इसको हम कहते हैं फोकस, यानी अपने लक्ष्य के प्रति मन जब एकाग्र होता है तो फिर हमें वो अनुभूति होती है। तो ये एकाग्रता हमें अनुभूति कराती है, और अनुभूति की स्थिति में हमारा मन चिंतन में नहीं होता, अनुभव में होता है। प्रारंभ में हम चिंतन कर रहे हैं, है ना, विचार चला रहे हैं, विचारों में मन है, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ शांति का अनुभव है, बहुत सोचना नहीं पड़ रहा, लेकिन एक अनुभूति है, आनंद का सिर्फ अनुभव है। और इस स्थिति में जब मन जाता है तो मन की स्थिति पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। मानो जब हम योग में बैठे तो मेरा मन अशांत था, किसी कारण से मेरा मन टेंशन में था, अशांत था, लेकिन अनुभूति की स्थिति में मन चला गया योग में तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, यानी अशांति की स्थिति समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही मानो किसी बात को लेकर मेरा मन दुखी था जब मैं योग में बैठी, लेकिन अनुभूति की स्थिति तक मन चला गया तो मन दुखी से सुखी हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा, मन खुशी में आ जाएगा ना। जो ईश्वर की शक्ति है वो हमारे मन की स्थिति को परिवर्तन कर देती है, उसे हम वो स्टेज ऑफ रियलाइजेशन बोलते हैं। तो हालांकि शुरू में हमें इस अवस्था तक आने में समय लगता है, इतना जल्दी हम रियलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ चिंतन तक ही रह जाते हैं ज्यादातर, लेकिन उससे भी मन को शांति मिलती है और मन की स्थिति का परिवर्तन होता है। तो ये राजयोग की चार अवस्थाएं हैं, इनसे मन गुजरता है जब हम योग अभ्यास करते हैं। फिर योग की विधि क्या हो, ये तो समझा हमने योग का आधार, अब योग की विधि क्या हो। तो बैठक है योग की सहज बैठक। राजयोग में हम कोई कठिन बैठक नहीं लेते हैं, पद्मासन लगाना या कोई भी ऐसा आसन जो कठिन हो, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे आसन नहीं लगा पाते। तो सहज रूप से 20 मिनट से आधा घंटा हम जिस स्थिति में बैठ पाते हैं, कोशिश करें बिना हिले डुले बैठें, क्योंकि अगर हम ज्यादा हिलते डुलते हैं तो भी हमारी एकाग्रता में कमी आती है। तो उसको हम कहते हैं सुखासन लगाकर, जिसको सामान्य भाषा में पालती मारकर बैठना कहते हैं। अगर हम जमीन पर बैठे हैं, धरती पर बैठे हैं, तो अगर हम सोफा और कुर्सी पर बैठे हैं जैसे आप सभी बैठे हैं, तो फिर हम जैसे सहज बैठ सकते हैं वैसे बैठे हैं। तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि यही बैठक हमें लेनी है, हम कोई भी सहज बैठक जिसमें हम बैलेंस्ड हैं, क्योंकि आयु होने के बाद मानो 50 साल की उम्र है या 60 साल की उम्र है, किसी को घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को कमर में दर्द होता है, कोई ना कोई ऐसी शारीरिक तकलीफ होती है, तो हम अपने शरीर के हिसाब से सहज स्थान और अपनी बैठक लेंगे। फिर ज्यादातर हम योग के लिए क्या समझते हैं, आंखें बंद करके हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा। लेकिन राजयोग में हम बंद आंख से नहीं, खुली आंख से अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये कर्म योग है और कर्म करते हुए हम आंखें बंद करेंगे तो हम कर्म नहीं कर सकते। अब खाना बनाते हुए आप आंखें बंद करेंगे क्या? नहीं, पर हम भगवान को तो याद कर सकते हैं। एक बच्चा अपने पिता को याद करता है तो क्या आंखें बंद कर लेता है? एक पत्नी अपने पति को याद करती तो क्या आंखें बंद करके याद करती है? क्या कहेंगे? सहज याद है ना, संबंध है तो अपने आप याद है, नेचुरल होता है। भले कोई याद में खोया है तो बोलेंगे आप कहां खोए हुए हो, है ना। तो मन कहीं और है तो फिर हम देखते हैं कई बार आपको देखते हुए भी दिखाई नहीं देता, सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता, कौन गुजर गया पूछेंगे तो कहेंगे पता नहीं। क्यों पता नहीं? आंखें तो खुली थी, क्योंकि मन कहीं और है। आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में मगन हैं, कौन गुजर गया? मैंने नहीं देखा, तो नहीं देखा क्योंकि भले आंखें खुली थी, लेकिन आंखें कब देखती हैं? जब मन जुड़ा हुआ है। अगर मन जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर मेरी खुली आंखें भी देखती नहीं और कान सुनते नहीं। और इसीलिए जब योग में हम इस दुनिया से न्यारे होकर मन को परम धाम में ले जाते हैं, परमात्मा की याद में अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, तो मन यहाँ है ही नहीं। फिर कौन क्या बोल रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, उसका हमें पता ही नहीं चलता। शुरू में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जब हम इनिशिएट करते हैं, योग शुरू करते हैं तो ध्यान जाएगा, अच्छा सब चारों तरफ क्या है, क्या सजावट की हुई है या जो भी क्या रखा है, कौन बैठा है, कौन जा रहा है। लेकिन जैसे ही मन एकाग्र हुआ, मन न्यारा हुआ, उसके बाद फिर हमें इसका फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमने बंद आंख से योग किया तो तीन बातें होती हैं। बंद आंख से हम सोते हैं, आंख बंद करके हम सोते हैं, तो आंखें बंद करते ही शुरू में लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है माना जो हम ध्यान लगाना चाहते हैं वो लग रहा है। लेकिन अगर हम थके हुए हैं या सुबह सुबह हम कर रहे हैं योग, तो हम सोकर उठे हैं, है ना। राजयोग का बेस्ट टाइम कौन सा है? अमृत वेला, जो आपको बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में, या सभी सुबह 4 बजे उठ करके, क्योंकि वो हमारा अपना समय होता है, उस समय कोई कार्य नहीं होते, तो हम वो समय योग अभ्यास करते हैं, तो सारे दिन के लिए आत्मा में वो शक्ति भर जाती है। तो उस समय तो हम सोकर उठे हैं, एक बात। अगर शाम को हम कर रहे हैं तो सारा दिन के हम थके हुए हैं। आपने आंख बंद की, क्या होने वाला है? 5 मिनट में नींद आ जाएगी। तो आप राजयोग नहीं करेंगे, निद्रा योग करेंगे। यहां भी हम देखते हैं, जब यहां योग कराते हैं, कमेंट्री देते हैं, तो कुछ, सभी नहीं, कुछ निद्रा योग में चले जाते हैं। शांति मिलते ही क्या होता है? तो इसीलिए आंख बंद करके हमें योग नहीं करना है। और दूसरा, जब हम आंख बंद करते हैं तो सपने देखते हैं। नींद में इंसान क्या देखता है? सपने देखता है, यानी सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। तो कहां कहां की स्मृतियां मन में भरी हुई हैं, वो सब आती हैं। तो यहां भी ऐसा ही होता है, आप आंख बंद करके योग करने लगेंगे तो आपको कहां कहां की बातें याद आ जाएंगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर उन यादों से मन को निकाल करके ईश्वर में लगाना, मन को ईश्वर की ओर ले जाना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ओपन नहीं होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड से ही हमें परमात्मा को याद करना है। और योग, हम आंखें बंद कर लेंगे तो जो एनर्जी, क्योंकि आंखों से ही हमारी एनर्जी वातावरण में आती है। सामने समझो कोई योग अभ्यास करा रहा है तो हम उनसे वो एनर्जी ले भी सकते हैं, भले हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि एनर्जी हमें कभी दिखाई नहीं देती, अनुभव ही होती है। ये चीजें सब सूक्ष्म स्तर की हैं, इनविजिबल हैं। जैसे हम ऑरा की बात करते हैं, है ना, तो हम उसे अनुभव करते हैं, कोई हमें दिखाई नहीं देता है वो सब। तो हमारी एनर्जी का जो लेन देन है वो आंखों के माध्यम से, 3 माध्यम है, आंख, हाथ, इसीलिए आशीर्वाद की बात करते हैं, मेरे सिर पर हाथ रख दो या जो भी कहते हैं, तो क्योंकि हाथों से एनर्जी ट्रांसफर होती है, और एक पैरों से, इसलिए पैर छूते हैं कि वो हमें मिले, वो बड़ों की एनर्जी हमें मिले, या जो आशीर्वाद की हम बात करते हैं। तो ये 3 हमारे माध्यम है जिनसे वो एनर्जी बाहर आती है। तो इसीलिए खुली आंख से हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। और राजयोग का ये अर्थ नहीं है कि हम कोई चिंतन नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं, हम अपने चिंतन की दिशा को मोड़ते हैं, विचारों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मन का स्वभाव सोचने का है, उसे हम विचार शून्य नहीं बना सकते। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि मन की शांति का अनुभव करने के लिए मन में कोई विचार ही ना चले, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? अगर मानो आपने जबरदस्ती मन को स्टॉप भी किया तो क्या होगा? जैसे ही मन चिंतन शुरू करेगा, इतना तीव्र गति से चलने लगेगा, वो स्प्रिंग की तरह, आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो दब जाएगी, लेकिन जब छोड़ेंगे तो डबल स्पीड से वापस आएगी। तो इसीलिए मन को हम राजयोग में स्टॉप नहीं करते, लेकिन मन को सुमन बनाते हैं ना। मन को हमें दमन नहीं करना है, मन को हमें अमन भी नहीं करना, अमन माना थॉटलेस भी नहीं करना है, लेकिन सुमन माना जो श्रेष्ठ विचार कर रहा है, श्रेष्ठ चिंतन कर रहा है, ऊंचा चिंतन कर रहा है, ऐसा मन हम बनाते हैं। राजयोग अभ्यास के दौरान हमारे जो आसपास का वातावरण है वो एकदम शांत होगा, वो कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा यहाँ हम गीत बजाते हैं, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं या योग शुरू करते हैं तो हम गीत बजाते हैं। तो उसका भाव क्या है? जो भी उस गीत के शब्द हैं, जो प्रभु स्मृति के हैं या प्रभु स्तुति के हैं, महिमा के हैं, वो सुनने से हमारे मन को दिशा परिवर्तन करने में मदद मिलती है, हमारे वो भाव बनते हैं। जैसे दुनिया में भी हम जो जिस तरह के सॉन्ग सुनते हैं तो मन की दिशा क्या हो जाती है, उसी अनुसार हो जाएगी। आप देशभक्ति गीत सुन रहे हैं तो मन में कौन से भाव आ जाएंगे, देशभक्ति के आ जाएंगे। अगर आप भक्ति गीत सुन रहे हैं, अगर फिल्मी गीत सुन रहे हैं, ऐसे ही आम फिल्मी गीत सुन रहे हैं, तो फर्क पड़ता है ना मन में क्या भाव उस गीत को सुनकर, क्योंकि संगीत का हमारे मन पर असर होता है। तो यहां पर जब हम ईश्वरीय स्मृति के गीत सुनते हैं तो हमें अपने मन को मोड़ने में, मन को दिशा देने में, वो भाव उत्पन्न करने में आसानी होती है। और खासकर योग अभ्यास के प्रारंभ में हमेशा कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब आप रसोई में भोजन बना रहे हैं तो भी आप भगवान की याद में भोजन बनाएं, और अगर हम उस समय कोई ऐसे गीत बजा लेते हैं, प्ले कर लेते हैं, तो भी हमें मदद मिलती है। राजयोग अभ्यास में कुछ लाइट्स भी हम चेंज करते हैं, आपने देखा व्हाइट लाइट में हम योग नहीं कर रहे, थोड़ा सा उसे पिंकिश रेडिश करते हैं, क्योंकि ये परम धाम का रंग है। परम धाम सुनहरी लाल प्रकाश वाला है। अब वही प्रकाश तो यहाँ नहीं किया जा सकता, तो प्रयास करते हैं कि मन को परम धाम में हम सहज ले जा सकें, इसलिए वो थोड़ा सा हमें वो मिले, कंडीशनिंग मिले। व्हाइट लाइट में हमें लगेगा कि हम योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइट्स चेंज हो जाएंगी तो मन तैयार हो जाएगा कि हाँ अभी हम योग के लिए बैठे हैं। और लाल रंग स्टॉप का भी सिग्नल होता है, तो वो हमें वो प्रतीक दे रहा है कि अब हमें वर्ल्डली थॉट्स को फुल स्टॉप लगाना है और अब स्पिरिचुअल थॉट्स को हमें पुट ऑन करना है, उनको हमें प्रारंभ करना है। लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक है, तो परमात्मा की शक्तियां जो हमें योग से मिलती हैं वो संचित होती हैं, पर आवश्यक नहीं है। ये सब हम विधियां अपना सकते हैं अगर हमें अवेलेबल हैं। जैसे आप सेवा केंद्र पर जाएंगे तो ये वातावरण आपको मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है जब हम अपने घर में मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये सब हम ना कर पाए, तो कोई आवश्यक नहीं है कि ये होना ही चाहिए, पर ये हमें मदद करते हैं, हमारे मन को मदद करते हैं एकाग्रता की ओर ले जाने के लिए। तो योग अभ्यास के लिए अगर हम थोड़ा सा वातावरण क्रिएट करते हैं, जैसे आप घर में भी करते हैं तो एक स्थान बना लें, जैसे एक पूजा घर भी बनाते हैं तो उसी अनुसार एक स्थान हम अपना बना लें कि ये हमारा मेडिटेशन का स्थान है। उस स्थान पर माना जैसे स्वच्छता हो, या हम कोई व्हाइट कर्टन वगैरह दे सकते हैं, वो भी अच्छा है। अगर बत्ती जलाते हैं तो वातावरण परिवर्तन हो जाता है, पर हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे कहा कि हमेशा ही हम करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो विधि हमने समझी और जो आधार आपको बताया गया, उस अनुसार अभी हम योग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं और जैसे मैं आपको चिंतन दूंगी, जैसे आपको बताया कि एकदम उसी चिंतन में आपका मन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि जो थॉट्स दिए जा रहे हैं उनको हम अनुभव करें, केवल उसे रिपीट नहीं करें लेकिन उसे अनुभव करने की कोशिश करें। अपने मन को न्यारा कर लें, अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, आवाजों से, और कुछ समय के लिए मन को ले जाएंगे ईश्वर की ओर। ये मेरी अंतर यात्रा है, रूहानी यात्रा है, इस संसार से मेरे पिता की ओर, मेरे घर की ओर, मस्तक के मध्य में स्वयं को आत्म स्वरूप में अनुभव करें। देखिए मैं एक चमकते हुए सितारे के समान ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैंने संसार में कर्म करने के लिए ये शरीर धारण किया है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूं। शांति मुझे पसंद है। शांति में ही सुख समाया है। शांति ही शक्ति है। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। मेरा निज धाम परम धाम है। ले जाए मन को सूर्य चांद तारों से पार उस दिव्य प्रकाश के लोक में, जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है। मेरे परम पिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हैं। वो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। मैं अंतर चक्षु के द्वारा परमात्मा को अपने सम्मुख देख रही हूं। जो गुणों में सिंधु हैं, शांति के सागर हैं, उनकी याद से मेरा मन शांत हो रहा है। वो परम पवित्र हैं। उनकी याद से मेरा मन भी पवित्र होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान हैं। उनकी समीपता में मुझ में समा रही हैं। जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं जो परिवर्तन लाना चाहूं ला सकती हूं। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। कि परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, मुझे ईश्वरीय प्यार मिला परम शिक्षक के द्वारा, मुझे सत्य ज्ञान का प्रकाश मिला है। वही सतगुरु मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं, मेरे कल्याणकारी हैं। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं सदा ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। शिव बाबा की याद से मेरा मन उस ईश्वरीय सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा है। बहुत हल्कापन, न्यारापन है। मैं अपने सब चिंता और बोझ परमात्मा को सौंपती हूँ। और उनकी शांति शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस साकार लोक में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं। लेकिन अब मेरे मन की स्थिति पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति।